الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے مدنی چینل کے ناظرین ہر اتوار کی صبح 11 بجے ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں ہر دفعہ ہم کوئی نہ کوئی موضوع کوئی نہ کوئی ٹاپک ایسا لاتے ہیں کہ جس کا تعلق یا تو گھر سے ہوتا ہے یا معاشرے سے ہوتا ہے یا گھر اور معاشرہ دونوں جب گھر آ گیا تو گھر کے ساتھ معاشرہ بھی ہے فرد آ گیا تو فرد کے ساتھ معاشرہ بھی ہے فرد ہے تو فرد کے ساتھ گھر بھی ہے فیملی ہے انسان کی ذاتی زندگی ہے تو ہم ایسے ٹاپکس لاتے ہیں کہ جس سے گھر میں بھی کوئی فائدہ ہو کچھ سیکھنے کا ہو کچھ تربیت ہو کچھ دنیا اور آخرت کے فوائد ملیں تو آج بھی جو ہم موضوع آپ کے ساتھ لائے ہیں وہ ہے گھر اور معاشرے میں بیماریوں سے حفاظت بیماری آنے سے پہلے ہی حفاظت کے اگر اقدامات کر لیں گے بارش آنے سے پہلے ہی اگر چھتری لے لیں گے سیلاب کے آنے سے پہلے ہی بند باندھ لیں گے تو بہت ساری آزمائشوں سے بندہ محفوظ رہے گا بعض اوقات بیماریاں آ جاتی ہیں آزمائشیں آ جاتی ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب تو ہوتے ہی ہیں اللہ پاک خیر فرمائے عافیت فرمائے بعض اوقات کہتے ہیں مقدر میں لکھا ہوتا ہے لیکن بہت کچھ انسان کا اپنا ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم مزید بھی آگے لے کر چلیں گے اس موضوع پر ڈسکس بھی کریں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو ہمارے پیارے پیارے مبلغین مہمان جو آج ہمارے پروگرام میں ساتھ ہیں ان کی زیارت بھی کرواتے ہیں ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر کامران اتاری صاحب ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ کی میرے خیال میں شاید ہمارے اس پروگرام میں پہلی دفعہ کرم نوازی ہے یہ ماشاءاللہ مرحبا ہمارے پیارے پیارے نعت خواں خلیل بھائی حکیم خلیل بولیں ماشاءاللہ خلیل بھائی آپ کی تو شاید تشریف آوری ہوئی آپ کا بھی پہلا ہی ہے تو اللہ پاک قبول فرمائے اللہ اچھی اچھی نیتیں ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کیونکہ جیسی نیت ویسا اجر تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں اول تاخر دیکھیں گے جو سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حمام میں گر گیا میرے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی جس کی وجہ سے ہاتھ میں کافی سوجن آ گئی میں بڑی تکلیف محسوس کر رہا تھا رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا مبارک ہونٹ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور پیارے پیارے میٹھے میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے بیٹا تمہارے درود پاک نے مجھے متوجہ کیا صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے درد تو دور ہو ہی چکا تھا ساتھ ہی ساتھ سوجن کا نام و نشان بھی نہ تھا تو درود پاک کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اخروی بھی ہیں رحمتیں ملتی ہیں برکتیں ملتی ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ خوب درود و سلام پڑھا کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین صحت بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے اچھا خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے نہ صرف خود وہ آزمائش میں پوری فیملی پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے آزمائش ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے بیماری بڑھ جائے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑ جائے تو اور آزمائش کہ گھر میں لوگ گھر سنبھالنا کام کاج بھی ہے مریض کو بھی دیکھنا ہے مریض کے پاس بھی پھر آج کل اس مہنگائی کے دور میں اخراجات پیسہ پانی کی طرح بہتا ہے پھر مریض الگ تکلیف میں اس مریض کو دیکھ کر کتنے لوگ پھر گھر والے افسردہ ہو جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے اسپیشلی اس وقت جو یہ ہمارا ویدر چل رہا ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے اور بھی کئی ممالک کا ویدر ہو اور ویدر موسم تو چینج ہوتا ہی رہتا ہے سردی سے گرمی گرمی سے سردی اس طرح کے موسم آتے رہتے ہیں تو موسم کی بھی احتیاط ہوتی ہے بعض اوقات گھر میں بھی احتیاط کھانے پینے کی احتیاط اس میں بہت سارا تعلق نیند کا بھی ہے ہماری گیدرنگ کا بھی ہے انوائرمنٹ کا بھی ہے صفائی ستھرائی کا بھی ہے تو اب ہمارے جو مبلغین ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں اور ان سے اس بارے میں کچھ رائے لیتے ہیں کہ گھر اور معاشرے میں بیماریوں سے حفاظت کے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ سید صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے انٹرو میں ہی کافی جو ہے وہ موضوع کا احاطہ کر لیا اور موسم کی تبدیلی کا بھی بیان کر دیا، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ اور دنیا بھر میں اکثر ممالک میں ان مہینوں میں سردی ہوتی ہے، چند ممالک ایسے ہیں اللہ کی قدرت ہے
جی
کہ وہاں دسمبر میں گرمی ہوتی ہے،
اسپیشلی افریقہ
سائڈ جو ہے، تو اس سائڈ پر جو ہے وہ گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور عموماً جب یورپ دیکھیں یا جو ہے ایشیا کے جو ممالک ہیں ان میں سردی آ جاتی ہے۔ ظاہر موسم تبدیل ہو رہا ہے تو گھر اور معاشرہ، تو گھر کو ہی اگر گھر ڈسٹرب ہوا ہم ڈسٹرب ہوں گے ظاہر،
بالکل،
تو اس کے لیے کچھ چند احتیاطیں کر لیں، انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ بقیہ دن آپ کے بہت اچھے گزر جائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے جناب، سردی ہو گرمی ہو، جناب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
سدا بہار ہے
وہ خود بھی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں بعض اوقات۔
صحیح،
مثلاً جیسے کہ اب ہم بات کریں گھر کے سربراہ کی، اگر وہ کپڑے پر اپنا ڈریس پر سردی کے موسم میں توجہ نہیں کریں گے، اگر
صحیح
مثلاً اب سردیاں آ گئی سویٹر نہیں پہن رہے آپ، سردیاں آ گئی ہم بائک پر جانا ہے ہیلمٹ نہیں پہن رہے، ویسے بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے ان کو حفاظت کے لیے، اگر اب سردیاں آ گئی تو اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہوا جب لگے گی تو ڈسٹرب کر دے گی،
صحیح،
پھر الرجی یہ اس کی آمد آمد ہو جاتی ہے جناب۔ تو اس کی یہ سارے معاملات جو ہے اس کے لیے احتیاط ضروری ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا دلیر نہ سمجھے کہ آگے آپ کو آزمائش پیدا ہو جائے، ہاں دلیر بننا ہے آپ کو نا جناب، کی نفس کی کاٹ کریں آپ، ہاں دلیری دکھائیں نا، شیطان کے سامنے دلیری دکھائیں کہ بس یہ عمل میں نے کرنا ہی نہیں ہے، یہ ہے صورتحال۔ اب اس میں جس طرح موسم کی تبدیلی ہے تو اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا،
صحیح، موسم کے ساتھ خود کو بھی تبدیل کریں،
بالکل۔ اب اے سی کی عادت بنی ہوئی ہے جناب، یا رات کو سردی ہے پھر بھی پنکھا چلا کر ہی، تو یہ پھر ساری چیزیں جب ہوں گی، بے احتیاطیاں ہوں گی تو آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ اچھا پھر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، بچے سو رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ، آپ نے پنکھا چلا دیا، بچوں کا خیال نہیں کیا آپ نے، اور وہ بیمار ہو گیا جناب۔ گھر میں ہم خود بھی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، ایک اچھا خاصا ہم نے اسٹوک رکھا ہوا ہے دوائیوں کا، پیٹ میں درد ہوا تو ہم نے یہ دوائی لینی ہے، اور سب کو تجویز بھی کر رہے ہوتے ہیں بارہ میں۔ معاشرے کے اندر یہ بھی ہم نے بات اپنے گھر کے اندر خیال کرنا ہے کہ آپ نے از خود ڈاکٹر نہیں بننا، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں انشاءاللہ، اچھا گوگل پر بھی پڑھ کر آتے ہیں آپ، ڈاکٹر سے بڑے ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے
ہیں، سرچ کر رہے ہوتے ہیں،
یہ معاشرے کے اندر یہ بھی چیزیں ہیں، یہ چیزیں بعض اوقات آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو ایک تو احتیاط کرنی ہے آپ نے، پہلا کام یہی ہے، پرہیز، دوا سے پہلے پرہیز، پنکھا دیکھیں آپ، اے سی دیکھ لیں اس موسم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈریس دیکھ لیں۔ اچھا پھر جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو کچھ سستیاں غالب ہو جاتی ہیں، پہلے روزانہ غسل کرتے تھے یار، دوسرے دن کرتے تھے، اب بالکل ہفتے ہفتے ہو رہے ہیں نا غسل ہی نہیں کر رہے، بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے ہاتھ نہیں دھوتے وہ کھانا کھانے میں عموماً جو ہے، حالانکہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے،
کھانے سے پہلے کا وضو تو سنت ہے،
بالکل،
اور سنت کی حکمت ہے یہ،
اور اس
کا واقعہ بھی ہے نا وہ کہ ایک گاڑی کا ٹرک کا ڈرائیور،
بالکل،
تو وہ جو ہے کہیں ہوٹل میں رکا اور اپنے کنڈکٹر یا کلینر جو اس کے ساتھ تھا اس کو کہا ذرا ٹائر چیک کریں، اور یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جب ہائی ویز پہ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی رکتے تھے تو یہ اتر کے ٹائر چیک کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، تو اس نے بھی پھیرا ہوگا، اس کے بعد کھانا کھایا، جب کھانا کھایا تو جو نا تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کے وہ اس کا دم نکل گیا، وہ سمجھا کھانے میں زہر تھا، تو بڑے پریشان ہوئے، لیکن باقی لوگوں کو کچھ نہیں ہوا، جب ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس ٹائر کے اوپر کوئی چلتے ہوئے میں کوئی سانپ آیا ہوگا، وہ لپٹ گیا، اس نے ہاتھ پھیرا تو وہی ہاتھ اس کے زہریلا اس پہ لگا، اسی سے کھانا کھایا تو وہ اس کو سائڈ افیکٹ کر گیا، پرابلم آ گئی ہے۔ تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، صفائی ستھرائی، سنت میں تو حکمت ہی حکمت ہے، سنت کی تو برکت ہی برکت ہے، تو صفائی ستھرائی نہیں رکھیں گے، کھانا بھی صاف ستھرا اور ہاتھ بھی صاف ستھرا، جسم بھی صاف ستھرا، کپڑے بھی صاف ستھرے، تو ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے کہ صفائی ستھرائی کا بھی کچھ صحت سے تعلق ہے کچھ؟
صفائی ستھرائی کا تو اگر میں یہ کہوں گا 100% صحت سے ہی تعلق ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے بنتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کھانے سے لے کے اوڑھنے پہننے تلک جتنے معاملات ہیں اس میں اگر صفائی ستھرائی کے خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں جا کے بیماری سے تعلق بنا لیتے ہیں اپنا، اور بالخصوص کھانے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سٹڈی دیکھتے ہیں تو ہماری جو بیماریاں ہیں اس میں اگر کم و بیش بہت بڑی تعداد بیماریوں کی ایسی ہے جس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو اس کی ریلیشن فوڈ سے آپ کی نکلتی ہے،
صحیح،
میدے سے آپ کی نکل رہی ہوتی ہے، खुराक से निकल रही होती है, आप खुराक को तयन नहीं कर पाते कि आपको खुराक किस किस्म की खानी है, कैसी खानी है और कितनी खानी है
और कब खानी है,
कब खानी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। हमारे यहाँ टाइम का भी नहीं ख्याल रखा जाता, जब दिल करता है खा लेते।
बड़ा तारा जुमला का डॉक्टर साहब आपने, यानी मेरे ख्याल में एक जुमले में आपने शायद आज का हमारा पूरा प्रोग्राम का वो अहाता कर लिया ना, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। ये
बिल्कुल देखें, जब आप इस चीज का तयन ही नहीं करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो बेसिकली एनर्जी आपके फूड से ले रही है,
सही,
ताकत आपके फूड से ले रही है,
सही।
अब वो ताकत किस किस्म की, पॉजिटिव ले रही है या नेगेटिव ले रही है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी उसका वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है और उसकी हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, अब हाई प्रोटीन डाइट हमारे बहुत सारे नाजरीन को समझ में नहीं आएगी, गोश्त के शौकीन ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा गोश्त और बिलखसूस लाल गोश्त वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत,
रेड मीट
जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, वो एक बहुत ज्यादा उनके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है, क्योंकि उससे फिर ये है कि बहुत सारी बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं कि आपको खुदा ना खास्ता कोई कार्डिक के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, किडनीज के इफेक्ट हो सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह अगर बाज लोग होते हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने के शौकीन होते हैं, उनके घर के अंदर मिर्चियां बहुत डल रही होती है, आप उससे हम रिलेटेड करते हैं तो आप गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ चले जाते हैं, ड्यूडिनल अल्सर की तरफ चले जाते हैं, वो एक तेजाबियत वाली कैफियत हो जाती है और इसोफेजियल रिफ्लेक्स हो जाता है, मुंह में कड़वा पानी आना शुरू हो जाता है, ये भी खूब आपके रहता है। कुछ लोग मीठे के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, अब मीठे खाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, अब मीठा खा रहे हैं उस वक्त तो नहीं लग रहा है, लेकिन उस मीठे को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम दिया है, लबलबा बनाया है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और उस मीठे को न्यूट्रलाइज कर देता है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन जब एक चीज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आप मीठा ज्यादा खा रहे हैं और उसने इंसुलिन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दी, एक वक्त आएगा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो काम करना शुरू कम कर देगा आपका या खत्म कर देगा। जब वो कम कर देगा, खत्म कर देगा, तो फिर आप डायबिटीज की तरफ चले जाते हैं, शुगर की बीमारी आपको हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी से तो वो बन ही नहीं रहा है, तो आपका लामाला फिर अब ये दूसरे मसाइल। तो आप अगर गौर से देखें तो आपकी तमाम बीमारियों का महवर अगर आता है तो वो आपके खुराक पे आके रिपेटता है।
ऐसा बड़ी पहली बात कही सी साहब। एक दफा मैं ये गैस्ट्रोलॉजिस्ट, क्योंकि प्रॉब्लम था आजकल मैदे की आमे में गया, एक तो उन्होंने अपनी टेबल पर अमीर अल सुन्नत की किताब पेट का कुफले मदीना रखी हुई थी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये, बोला वाकई इस पर अमल कर लें और अपनी गिजा का, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ना इसी तरह उन्होंने कहा, अपनी गिजा का आप एहतमाम कर लें और पेट को कुछ खाली छोड़ें, चबा चबा कर खाएं। मुझे भी कहा उन्होंने, बोला कि आपका एक निवाला मुँह में इतनी देर रहना चाहिए और वो अच्छी तरह चबा के खाएं, छोटे लुकमे खाएं और कुछ पेट का हिस्सा खाली छोड़ दें ताकि वो डाइजेस्ट हो। ये इस पर खलील भाई एक दफा हाजी शाहिद भाई से बात हो रही थी, हाजी शाहिद भाई को भी रहती है प्रॉब्लम, ये हम बैठे होते हैं मशवरे तो सब दे ही रहते हैं, जैसे आपने फरमाया हर बंदा तबीब और डॉक्टर बन जाता है, तो कुछ मैदे की प्रॉब्लम थी किसी को, तो किसी ने शुरू कर दिया कि हजरत एक काम करें नींबू पानी पी लें। अच्छा, तो दूसरा डॉक्टर आया, हम अपने तौर पर खुद डॉक्टर खुद साखता, दूसरा आया बोला काम करें पपीता मंगा लें, फिर किसी ने कहा कि आप ये खा लें, तो हाजी शाहिद भाई ने प्यारा बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, मैं भूलता नहीं, फरमाया अल्लाह के बंदे पेट को खाली रखकर भी कुछ मकसद पेट पर रहम करो कि अभी इतना खाली है कि चूरन खाने की भी जगह नहीं है, इस पर और लोड डालना है, इसमें और खाना है। तो खलील भाई परहेज से मुतल्लिक नफ्स राजी नहीं होता, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रेड मीट यानी लाल गोश्त स्पेशली बड़े का गोश्त आ जाता है, और यहाँ कराची में और भी शहरों में होगा कि जब बिरयानी बनती है तो बड़े की सुनते हैं बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन उसमें चिकनाहट इतनी होती है कि बाद में जब पता लगता है, वो तो अब इस एज में आकर एहसास होता है कि यार अब चिकनाहट गोश्त और ये, लेकिन बगैर बिरयानी आए और बगैर बोटियों के आ जाए तो लोग तो वो ढूंढ रहे होते हैं, तकाजे कर रहे होते हैं कि हजरत वो बोटियाँ ख़त्म हो गई है, तो उस वक्त तो कंट्रोल नहीं होता, फिर बाद में पछताते रहें, आपके पास आते रहें, हकीम साहब के पास जाते रहें। खलील भाई क्या फरमाएंगे परहेज से मुतालिक?
पेट का कुफले मदीना और आदाब आम जो उसी के साथ मुतसिल है, फैजान सुन्नत का जो पहला बाब है, तो इसके बारे में जमजम नगर हैदराबाद में लतीफाबाद में एक कॉलेज है जहाँ पर ये पढ़ाया जाता है, इस तिब के हवाले से हकीम वगैरह, तो वो बहुत पुराना है, 40-50 साल पुराना है, तो वहाँ के एक प्रिंसिपल थे, उनको मैंने ये फैजान सुन्नत तोहफे में दी।
अच्छा,
तो वो कहते हैं कि मैंने इसको 2 से 3 बार पढ़ा, और वो कहते हैं कि अगरचे मैं खुद 40 साल से पढ़ा रहा हूँ लेकिन इसमें वो बातें मैंने पढ़ी हैं कि जो आज तक मैंने नहीं पढ़ा।
क्या बात है, जो 40 साल से पढ़ा रहे हो।
फिर वो काफ़ी मुतासिर हुए अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद फिर वो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात के लिए भी हाजिर हुए।
वाह,
तो वहाँ भी उन्होंने जिक्र किया इस बात का।
क्या बात।
उसमें भी अगर हम पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं उस किताब का, तो पेट का कुफले मदीना या आदाब ताम, फिर इससे मुतसिल फैलान रमजान जो बाब है, उसमें भी यही खाने पीने के एतबार से बहुत सारी रहनुमाई आपने फरमाई है। तो उन सब का अगर लुबे लुबाम हम देखें तो यही निकलता है कि 100 दवा की 1 दवा परहेज है।
क्या बात।
तो परहेज का बहुत बड़ा ताल्लुक है इससे कि इसे भी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि जिस इनकी गुफ्तगू का निचोड़ था कि बंदा अमूमन खाने पीने ही से बीमार होता है और खाने पीने ही से सेहतमंद होता है, कि खाने पीने का तायुन करना है कि मैंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो इसमें हमारे यहाँ बहुत कमी है, अपने लिए भी जैसे बच्चों के एतबार से। तो ये कई यानी फैला हुआ मौजू है कि हमने क्या खाना है, बच्चा छोटा है तो उसको क्या देना है, बड़े को क्या देना है, और घर में ज़ईफ जैसे उम्र रसीदा जो अफराद होते हैं, जैसे हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वालदेन हैं, कोई दादा दादी हैं, तो इनकी भी डाइट अलग होती है।
सही
सेहत के एतबार से वो आम तौर से उनका मैदा हमारी तरह नहीं होता, एक जो जवान आदमी का होता है कि हर चीज़ को हजम करता है, तो उनके एतबार से ऐसी ग़िज़ा दी जाए कि जो उनकी सेहत के एतबार से अच्छी हो और उनके मैदे के एतबार से भी हजम करने के एतबार से मुनासिब हो कि वो उसको हजम कर पाए। तो इन सब चीज़ों के हवाले से, बच्चों के हवाले से हम अगर जिक्र करेंगे, और साथ में आपने जैसे ये फरमाया कि अभी हमारा मौसम तब्दील हो रहा है, तो इसके एतबार से कुछ बच्चों के हवाले से भी अर्ज करूँगा। तो एक घरेलू इलाज, एक नुस्खा कह लें आप, तो ये घर में बनाकर रख लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल उम्मीद है कि सर्दी आने से पहले और इस मौसम के दौरान अगर ये आप बच्चों को देते रहें वक्तन फवक्तन, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल सर्दी के मज़ीद असरात से और ठंड लगने से, नज़ला खांसी ज़ुकाम वगैरह, नमोनिया, इस तरह की चीज़ों से इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल हिफाजत रहेगी। बहुत ही आसान सा है और ये आप हर जगह इसको कर सकेंगे। सबसे पहले आप शहद ले लीजिए 1 पाव, और कोशिश करें कि कोई अच्छे से अच्छा जो आपको शहद मिल जाए, जो आपको मिल सके वो शहद लीजिए। तो 1 पाव शहद 250 ग्राम, और इसके अंदर 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम ज़ाफ़रान आपने लेनी है। और नंबर 3 जायफल, ये गरम मसालों में घरों के अंदर ये किचन में ये चीज़ मौजूद होती है, तो जायफल, तो इसका मगज़ जो होता है यानी अंदर से, जिस तरह बादाम के ऊपर बादाम को हम तोड़ते हैं तो अंदर से उसका मगज़ निकलता है, तो जायफल लेकर 1 अदद जायफल दरमियाने साइज़ की इसको पीस लीजिए, और 1 ग्राम ज़ाफ़रान घर में अगर इसको पीसनी हो तो आप इसको, कोई आपके घर में ऐसी छोटी मोटी मशीन हो, या फिर इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए, ज़ाफ़रान को थोड़ी देर धूप में रख दें, या इसको थोड़ा सा किसी गर्म बर्तन पर रखेंगे तो ये गर्म हो जाएगी, तो फिर आप इसको उंगली से भी, हाथों से भी इसको पीस सकते हैं, तो उंगलियों से थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये बारीक हो जाएगी। 1 ग्राम ज़ाफ़रान, 1 अदद जायफल और 1 पाव शहद, तो इन तीनों को जो है मिक्स करके आप रख लें, और छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा उंगली भर जैसे चटा दें, और जो 4-5 साल की उम्र के बच्चे हैं वो 1/4 चम्मच टीस्पून जो होता है उसका 1/4 हिस्सा क्वार्टर, ये आप बच्चों को देते रहें सुबह शाम, इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल ठंड लगने से भी महफूज रहेंगे अल्लाह ने चाहा तो, और साथ साथ ये नज़ला ज़ुकाम खांसी से भी इंशाल्लाह हिफाजत रहेगी। सैयद इब्राहिम बापू दामत बरकात अली ने भी इरशाद फरमाया कि जैसे सर्दी के एतबार से कपड़ों का
सही
मुनासिब लिबास का ख्याल रखा जाए, तो बच्चों को बाद औकात खुद वाले साहब ने हेलमेट पहना होता है, बच्चा आगे बैठा होता है,
ज़्यादा हवा उसको लग रही होती है,
तो उसका भी एहतमाम किया जाए कि ऐसे मौके पर उसको पीछे बिठाया जाए, तो ये भी एक चीज़ है। इसी तरह से ये सर है, बाजू है, गला है, सीना है, और फिर मज़ीद ये टांगे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना वो ढकी होनी चाहिए। अगर ये पेट पर और टांगों में हवा लगती रहे तो इसका फिर असर जो है ना पूरे जिस्म पर पड़ता है ठंड का, तो इससे इसका एहतमाम करना चाहिए। और ख़ास तौर से सर्दियों में है वो दिल के अमराज और फालिज वगैरह के इम्कान मज़ीद बढ़ जाते हैं।
सही।
और बच्चों के हवाले से ये है कि बच्चों को इन दिनों में ख़ास तौर से ऐसी चीज़ों से कि जैसे खट्टी चीज़ें हैं उससे बचाया जाए, खट्टी चीज़ें खिलाई जाती हैं, बाद अवत तली हुई चीज़ें खिलाई जाती हैं, या फिर ठंडा पानी या फ्रिज से कोई चीज निकाली उसमें भी ठंडक होती है, वो ऐसी चीजों का बच्चों को ख्याल करना चाहिए बच्चों के हवाले से कि उनको ऐसी चीजों से बचाया जाए और उनकी डाइट का खास तौर से ख्याल रखा जाए कि बच्चों का अगर कोई नमोनिया है या कोई इस तरह सीने की ठंड है या और नजला जुकाम खांसी है तो फिर बच्चों को संभालना जरा मुश्किल होता है। तो इसके लिए खास तौर से बड़ों के एतबार से ज्यादा जो है ना वो बच्चों का ख्याल करना चाहिए कि इनको खट्टी चीजें जब खाते हैं ऐसी टॉफियां ऐसे खाने पीने की अशिया के जिसके अंदर नकली रंग होता है
सही
वो फिर जाके गले को पकड़ती है तो ये गोया कि वो ठंड की तरफ ले जाने का एक रास्ता होता है
सही।
तो इन चीजों से तो वैसे ही बचना चाहिए खास तौर से जो है सर्दियों के अंदर ये टॉफियां और इस तरह की चीजों से बचाना चाहिए। और नीम गर्म मशरूब होते हैं जैसे बच्चों को आप यखनी दे दें देसी मुर्गी की यखनी दे दें और इसी तरह से बकरे का शोरबा वगैरह इस तरह की चीजें दी जाए। अंडे की जर्दी है बेहतर ये है कि देसी अंडे की जर्दी हो वो दी जाए। इसी तरह से शहद जो है अगर अच्छा शहद मिल जाए तो वो बच्चों को चटाया जाए सुबह शाम तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल काफ़ी मुफीद रहेगा। इसी तरह बाद वक्त बच्चे घर में चल फिर रहे होते हैं तो नंगे पैर होते हैं
सही
वो भी ठंड की तरफ ले जाने वाली एक बात है। तो इसी तरह मोजे हैं गर्म कपड़े हैं जूते हैं तो इनका एहतमाम किया जाए घर में भी कि हमारे यहाँ आमतौर से जो घर होते हैं वो
पैक होते हैं ज़्यादातर
तो बाज इलाकों में खुले घर होते हैं
जी
बाज जगह जैसे बिल्डिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर तो पैक होते हैं लेकिन खुले घर भी बहुत होते हैं
जी।
तो वहाँ पर ठंड की आमदोरफ जो है वो ज़्यादा होती है तो बच्चों को खास तौर से अगर ये खाने पीने की एहतियातें करवाई जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़ायदा रहेगा।
इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा अपने खलील भाई की बहुत प्यारी बात इन्होंने मकसद अहाता किया है। रात को सोते हुए जिनके घर में छोटे बच्चे उनको अंदाज़ा होगा कि वो ब्लैंकेट या चादर ओढ़ते नहीं है एक लात मारते हैं यहाँ फेंक दी वहाँ फेंक दी सुलाते कहाँ हैं बरामद कहाँ होते हैं ये तो इनको जो है ना हाफ आस्तीन रात में ना पहनाएं स्पेशली जब ठंडा मौसम शुरू हो और नेकर या इस तरह ना पहनाएं कि कम अज़ कम कोई इस तरह का कपड़े होंगे पूरे पाँव उनके ढप जाएँ हाथ भी ढप जाएँ क्योंकि मच्छर भी होते हैं डेंगी का वैसे यहाँ स्पेशली कराची और कई एरियाज में सुन रहे हैं। तो बच्चों की खासकर हिफाजत और जिस तरह खलील भाई ने फरमाया ना कि सॉक्स घर में वो ठंडे फर्श पे मार्बल या टाइल होता है घर में ठंडे फर्श पे चल रहे होते हैं। अच्छा मैं ये भी अर्ज करूंगा घर की स्पेशली ख्वातीन ही घर को संभालती हैं कि जब थोड़ा ठंडा मौसम आना शुरू हो जाए तो आपके डिस्पेंसर लगा है तो उसको भी ऑफ कर दें फ्रीजर के अंदर फ्रिज के अंदर जो है वो ठंडा पानी भी ना रखें नॉर्मल कर दें। जब पानी होगा ही नहीं तो कोई पिएगा नहीं बाजू का तलब होती है कि ठंडा पानी पिए लेकिन पिया गला पकड़ लिया तो फिर बैठ जाएंगे ना अल्लाह ना करे बढ़ेगी प्रॉब्लम तो फिर कहाँ से कहाँ बीमारी चली जाती है। मजीद क्या फरमाएंगे शाह साहब
जी आपने सही कहा बच्चों के ताल्लुक से भी अब इसमें देखिए तजवीज नुस्खा तो हमारे हुकुमा और डॉक्टर साहब करेंगे और
देसी टोट के कोई
बयान करते हैं
जी।
ऐसे तो हम वो बात बयान करते हैं इसमें कि एक मैं कॉल कहता हूँ कि हमारा बावर्ची खाना हमारा दवा खाना
वाह भाई वाह बड़ा प्यारा जुमला है
बड़ी नेमतें अच्छी हैं हमारे बावर्ची खाने के अंदर गौर करें तो इसमें और ये सर्दी की आमद पर अगर बच्चों को हल्दी वाला दूध पिला दिया जाए बिल्कुल मामूली सी चुटकी भर हल्दी आप दे दें दूध के अंदर गर्म दूध के अंदर
सही
और इस सर्दियों के मौसम में आप
अच्छा बड़े पीना चाहे हल्दी वाला दूध
उन्हें भी पीना चाहिए खांसी का बेहतरीन इलाज है
सही
बल्कि एंटी कैंसर है ये इसके मुताबिक बहुत हुकूमत
बड़ा प्यारा आपका कि हमारे घर का जो किचन है बावर्ची खाना ये दवा खाना भी है दवा खाना भी है और बीमारी की तरफ ले जाने वाला भी है
अगर आप उस तरफ जाएंगे
जरा
शुरू में परहेज की बात हो रही थी परहेज की बात होती है ना लोग कहते हैं यार ये जो है वो हकीम साहब बगैर परहेज के अंदर दवाई देंगे और डॉक्टर साहब ने भी कुछ ना कुछ बताना है तो चले एक छोटी सी बात बयान कर दूं मैं
जी,
तो छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है कि जब भूख लगे ना ये भी खाना खाए
वाह एक फार्मूला सेट कर लें
तो ये आप देखें वैसे तो इसका ये कंप्लीट जब होगा कि जब शिकम शेरी हो ना उससे पहले हाथ रोक लें
रोक लें
जरा मुश्किल है चले उससे पहले वाले पर अमल कर लेना पहले वाले पर अमल कर लेंगे भाई जब भूख लगेगी जब खाएंगे वरना ये होता है जो चीजें रखी हुई है ना अब वो तो हमें कह रही होती है यूज मी और हम कहते हैं भाई सबको यूज करना है
सबको नवाजना है
सबको नवाजना है तो बस आपका पेट जो है वो आपका अपना ही है
अपना ही है
डॉक्टर का पेट नहीं है डॉक्टर के पास फीस है फिर तो इसका इंशाल्लाह एहतियात करें रात को ये बड़े या छोटे दोनों हस्ब मुनासिब जो है वो आप दूध गर्म कर लें और जो आप पी सकते हैं वो आप एक कप ले लें उसमें एक चुटकी भर हल्दी डाल दें इंशाल्लाह इसका फायदा होगा आपको। इसके अलावा मैं हवा भी बयान करता हूँ बड़ों की
जी जी
इसमें ये सर्दियों में आमद आमद है तो इसमें इंशाल्लाह रहमान अगर ऐसे कावा बना लें आप कि एक कप पानी के अंदर आप बल्कि दो कप ले लें और उसमें आप तीन लौंग डाल दें और एक 6 ग्राम आप अदरक डाल दें इसके अंदर, और दालचीनी जो है उसका एक पीस ले लें आप छोटा वाला इतना, इसको आप जो है वो बॉईल कर लें। अब ये कावा आपका तैयार हो गया इतना कि अगर 2 कप थे तो 1 कप रह गया, और इसको आप चाय की तरह जिस तरह पीते हैं वो आप
दिन में 1 कप पी लें, 2 कप पी लें,
ये रात में और शाम में भी पी सकते हैं आप इसको।
सही सही
नहीं है इसका इंशाल्लाह रहमान। लौंग खाने की तो बहुत सारी बातें, चूंकि अभी मौजू ये नहीं है, सवालत पर चला जाएगा, तो ये कावा भी इस्तेमाल करें, हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें।
अच्छा ये घरेलू नुस्खा है ना, और इसका साइड इफेक्ट बजाहिर यूं नहीं है कि एक तो नॉर्मल चीज है बंदे के यूज में आती है, तो वही वाली बात है कि आपका बावर्ची खाना आपका दवा खाना है, इसको बना लीजिए।
जिसमें शहद शामिल कर लें, जो शुगर वाले हैं वो शहद ना शामिल करें, जो है वो शहद तो आप सारे मर्दों में इंशाल्लाह फायदा ही देगा, शुगर वाला जो है वो इसको इस्तेमाल ना करें, शहद को बगैर शहद के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह खांसी का और ये मौसम की जो तब्दीली है उसके जो असरात होंगे ना उससे इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे।
क्या बात है मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, के वाकई बंदा बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि कोई चीज़ सामने आई और नहीं खाई तो पछतावा होता है कि यार ये रह गई। तो अमीर अली सुन्नत फरमाते हैं कि कई दफ़ा बंदा खा कर पछताता है कि यार काश ना खाता। तो बड़ी प्यारी बात सैयद साहब ने फरमाई कि जब भूख लगे तब ही खाएँ। डॉक्टर साहब कई लोग हैं ना, कई कौमों में भी कई खानदानों में एरियाज में मिजाज होता है कि जैसे सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर लंच भी किया, अब शाम को 4, 5, 6 बजे जो है ना एक रिफ्रेशमेंट या कुछ ना कुछ, बांग्लादेश में तो उसको नाश्ता कहते हैं, तो उसको नाश्ता कर लीजिए। मैं जब पहली दफ़ा गया तो 4, 5, 6 बजे किसी के यहाँ गए ना, तो उन्होंने कहा कि नाश्ता कर लीजिए। मैंने कहा हमने तो सुबह कर लिया था, बोला नहीं हमारे भी नाश्ता कीजिए। फिर बताया कि जो रिफ्रेशमेंट होती है ये स्नैक्स होते हैं, ये इनका मकसद है शाम में। अब फ्रूट चाट हैं, फ्रूट्स हैं, और अपना कुछ फ्राइज हैं, कुछ समोसे हैं, कुछ वो सब आ गए ना, अब वो खा लिए बंदे ने, अब रात का खाना अलग है, तो इसमें क्या क्या एहतियात की जाए? ये
नहीं खाएंगे तो फिर शाम को डॉक्टर साहब से मुलाकात ही होगी,
यही अपॉइंटमेंट ले लें पहले से आपसे।
डेफिनेटली लाजमी सी बात है, देखिए एक चीज की, हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी, आप आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है आपको ये पहले आइडिया होना चाहिए कि आप को कितनी गिजा की जरूरत है। अगर आप एक पानी इसके पेट्रोल की टैंक के अंदर भी ओवर पेट्रोल डाल देते हो वो भी ओवर हो जाती है, गाड़ी चलना बंद हो जाती है।
सही,
तो
सही।
इसी तरह आप अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो फैट की शक्ल में आप में शामिल होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके अपने नुकसान हो जाते हैं। तो जैसे बाबू ने बताया कि इसमें भूख का लगना जरूरी है।
सही।
अब और अगर ये किया जाए कि कितने % लोग ऐसे हैं हमारे इस वक्त आजकल के हालात को देखते हुए कि वाकई भूख लगती है तो खाना खाते हैं, हम टाइम होता है तो खाना खाते
हैं, टाइम से खाते हैं, भूख
हम टाइम से खाते हैं, हम भूख से खाना नहीं खाते।
सही, सही।
नाश्ता हमने सुबह करना है, दोपहर का खाना 2 बजे खाना है, रात का खाना 9 बजे या किसी ने 11 बजे खाना है, ये हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको मैंने देखा है कि वाकई उनको भूख लग रही है तो खाना खाते, लेकिन अक्सरियत को देखा है कि वक्त होता है तो खाना खा लेते हैं।
सही।
तो ये नहीं करना चाहिए, वाकई ऐसे करना चाहिए कि भूख लगे। अब जो रिफ्रेशमेंट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो रिफ्रेशमेंट अगर आप बहुत शौक है किसी को खाने का तो अपनी डाइट कम कर लें।
सही, बड़ी प्यारी बात
है। इस तरह अगर करके चलेंगे तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस मयार की चीज खा रहे हैं। अगर वो मयार ही अच्छा नहीं होगा, अगर वो मिसाल के तौर पर कोई फ्राइड चीज ले रहे हैं वो ऐसे खराब ऑयल में तली हुई होगी या उसके अंदर जो मसाला जात यूज किए होंगे वो खराब होंगे, वो डेफिनेटली आपको जाके प्रॉब्लम करेंगे, चाहे किसी वक्त भी खाएं।
सही भी।
तो बेहतर ये कि मयारी चीज, साफ सुथरी चीज, उसका इस्तेमाल और वक्त पे इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें। बाद लोगों को लेट नाइट खाने की आदत भी होती
है
और लेट नाइट खा के फिर सो जाए, फिर सुबह वही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम रमजान में अक्सर ओबेसिटी शिकायत देखते हैं कि लोग शहरी करके सो जाते हैं और फिर सुबह उनको ब्लोटिंग और वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, डकारें आना शुरू हो जाती हैं, किसी का पेट फूला हुआ होता है तो शाम को डॉक्टर साहब के पास मौजूद होते हैं। तो वहां पे भी हम यही कहते हैं कि यार आप हल्का खाना लें, लाइट खाना लें, आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात वो ये नफ्स के साथ लड़ना वो बड़ा मुश्किल काम है आजकल के दौर के अंदर, इतनी नहीं लड़ाई कर पाते, हर किसी से लड़ लेते हैं लेकिन नफ्स से नहीं लड़ पाते। अब इसका क्या नुस्खा होगा ये तो मेरी समझ में नहीं आता, बापू इस नुस्खा बता दे।
अपने आपको स्टॉप करना होगा, मगर मैं इसके साथ साथ
जी जी
घर में है, हम जा रहे, मौसम की तब्दीली हो रही है, तो अभी घर और माशरा इसमें कहेंगे भाई खाने की तो कोई बात कर ही नहीं रहे, तो भाई आपको खाने से मतलब जो है वो रोका नहीं जा रहा कि बिल्कुल खाना छोड़ दें आप, मौसम की तब्दीली
खाइए
आप खा,
लेकिन वो हेल्दी फूड खाइए।
जी जी। अब देखिए ब्रोस और ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह के ऑयल जो वो ऑयल कम हो रहा है उसमें और ऑयल मिलाया जा रहा है। तो ऐसी गिजा मतलब जो है जो मियारी नहीं है, ऐसे फूड नहीं लेने आपने, चॉइस आपने खुद देखनी है। आप जानते हैं माशरे के आप एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अच्छा, इसमें जो देसी गिजाएं हैं खुशन मेमनों के घरों के अंदर हम देखते हैं गोंद बनता है इसके अंदर, लहसुन बनता है इनके अंदर। तो अब ये कि देसी घी का इस्तेमाल होता है, हम कहेंगे भाई ये तो आप महंगे नुस्खे बता रहे हैं, तो बरूस कौन सा सस्ता है, पिज्जा कौन सा सस्ता है, उस पर खर्च कर रहे हैं। जब फ्रूट की बात आती है, जब सब्जी की बात आती है, तो भाई सब्जी भी महंगी हो गई, फ्रूट भी महंगा हो गया, बादाम भी महंगे हो गए। अरे भाई बादाम नहीं खा सकते, गरीबों के बादाम खा ले, मूंगफली खा ले आप।
अच्छा, बांग्लादेश में ना ये बादाम, ये मूंगफली है इसको कहते ही बादाम है,
हम कहते हैं।
मुझे कहा किसी ने कि अली भाई बादाम खाएंगे बांग्लादेश में, तो वो मेरे सामने मूंगफली लिया है, मैंने कहा तो मूंगफली है, बोला नहीं हमारे यहाँ का बादाम है। तो आप वाली वही बात है, गरीबों का बादाम
का बादाम है। इसमें अलसी के लड्डू बनते हैं, बाज औकात जो है वो गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। अच्छा, इमरती है जो अगर शुगर वाले नहीं है, ये वाकई ये बनती है, इसके असल फार्मूला माश की दाल का है। अगर आप इमरती नहीं बना रहे तो माश की दाल के आप जो है वो मिठाई बना सकते हैं। तो अगर जो आपको हजम हो जाए, देसी घी का इस्तेमाल करें, बादाम किशमिश ये खाने इस सर्दी के मौसम में ये आप इस्तेमाल करें, जितना आप हजम कर सकते हैं।
सही।
इसमें एक इलायची का मैं आपको जरूर कहूंगा, जब ऐसी चीजें आप खाएं हेल्दी फूड, तो इलायची खा लें। इलायची जो है अली भाई ये खजानची है, हाँ इसका तो बहुत खजाना है।
वाह भाई
वाह। आप अगर ऐसी चीजें खा लें उसके बाद एक दो तीन इलायची खाकर, दिल घबराहट पैदा होती है ना कभी आपको, अगर ऐसा लगता है घबराहट पैदा हो रही है या ब्लड प्रेशर जैसी सूरत पैदा हो रही है, एक दो इलायची खा रहे हैं आप। इलायची के होता है लिखा है मुफर्रे कल्ब है, आप कहें बड़ा मुश्किल कह दिया जनाब, कल्ब में दिल में खुशी पैदा।
अच्छा, यूं आसानी
है, अच्छा फील होगा।
हाँ,
तो ये इलायची आप दो तीन ले लें, खाने के बाद भी ले सकते हैं आप, इंशाल्लाह ये हाजमा भी करेगी और आपके दिल में फर्द भी पैदा करेगी, घबराहट से भी निजात दी।
क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, माशाल्लाह टॉपिक हमारा ऐसा ऐसा खुल रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा, तो आपने ये नुस्खे लिख लेने, आप लिख लेंगे उन पर अमल करेंगे। और वाकई जैसे सैयद साहब ने फरमाया कि बाज़ चीज़ें हमें एक साथ लेते हैं कॉस्टली लगती है, लेकिन एक दफ़ा अगर कहीं बाहर गए, बाहर खाना खाया, कोई दावत कर ली, कोई इस तरह की कोई फरमाइशी प्रोग्राम हो गया, तो वो उसका बिल भी इतना बन जाता है जिसमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट, देसी घी और ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन क्या है कि वो तवज्जो नहीं होती है। फ्रूट्स जैसे हमारे खलील भाई ने कहा कि बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट और ये तो आम दिनों में भी खाते हैं तो गले में लग ही जाती है, अजीब अजीब इस पर टेस्ट डाला होता है, अजीब किस्म के एसेंस होते हैं, तो बच्चों को क्यों इसका आदि बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स से बच्चों को बचाएं, आइसक्रीम से बच्चों को बचाएं, और बड़े भी बचें, बड़े भी तो इससे अगर महफूज रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। मैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक आपको अर्ज करता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शिकम सेरी बीमारी की जड़, शिकम सेरी यानी पेट को भरना, ये बीमारी की जड़, और परहेज दवा की असल है। हर जिस्म को इसी चीज का आदि बनाओ जिसका वो आदि है। तो अपने पेट को हम बहुत ज्यादा भर लेंगे। मैं इस पर खलील भाई एक अर्ज करूंगा, आप तो माशाल्लाह हिकमत से एक ताल्लुक रखते हैं। बापू जब हम छोटे थे ना तो हमारे घर में खानदान के जो बड़े थे मर्द हजरात ताया वगैरह, जब शाम होती ना तो रात के खाने में अक्सर सुनते कि भाई आज क्या बना दें, घर वाले पूछते तो बोले खिचड़ी बना दें, दलिया बना दें। अच्छा, जाहिर बात है कि उस वक्त तो ना ये तवज्जो थी ना जहन था, हमारा मूड खराब कि यार ये जाओ ताया जान के पास, खिचड़ी दलिया, खिचड़ी दलिया को मरीजों वाला खाना। अब यकीन कीजिए, अब आकर जब इतने सारे डिजीज और ये सब आ गई और अब कुछ एहसास होता है, अल्लाह अमल की भी तौफीक दे दे, लेकिन अब एहसास होता है कि यार पेट पर मैदे पर भारीपन है, चलो यार कोई लाइट चीज बना लीजिएगा, खिचड़ी बना लीजिएगा। ये तो क्या कहेंगे खलील भाई, ये कि ग़िज़ाएं कैसे बंदा मोतदिल रखे, और वही वाली बात जो डॉक्टर साहब ने भी फरमाई और बापू भी फरमा रहे हैं कि नफ्स रुकता नहीं, तो इसको कैसे आदि बनाएं, क्योंकि आप तो सबसे पहले हिकमत में तो परहेज बताते हैं। कई लोग शायद इसी वजह से आपकी गली से ना रास्ता बदल के चले जाते हैं कि हकीम साहब जो है ना परहेज करवाएंगे, ये होता नहीं है।
बात तो ऐसी ही है कि एक तादाद ऐसी है कि जो हकीमों के पास इसलिए नहीं आते कि यार ये रुकवा देते हैं बहुत सारी चीज़ें। मानी एतबार से भी ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें खाएं, क्योंकि हर शख्स का मिजाज, उसका मैदा, उसकी जिस्मानी कंडीशन, उसकी बॉडी, वो अपने अलग अलग उसका निज़ाम है, अलग अलग उसके मामलात हैं। बाद अवकात कोई शख्स जो है वो उसको गर्मी बहुत लगती है, हाथों में पसीने आ रहे होते हैं और पैरों में गर्माइश होती है, वो किसी को जो है वो ठंड लग रही होती है, किसी के हाथ ठंडे रहते हैं और गर्मी में, सर्दी में भी ठंडे रहते हैं, गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। तो बाज़ों को जो है वो बलगम बहुत ज़्यादा बनती है, वो नज़ला ज़ुकाम खांसी के दौरान घूमते रहते हैं और बादलों को जो है वो इस तरह की बीमारियां होती, जिसे हम कहेंगे कि खुश्की या गर्मी इस तरह की, यानी हर शख्स की जिस्मानी कैफियत अलग अलग होती है। तो अब जैसा मरीज़ है, मिसाल अगर किसी को जरकान है, किसी को पीलिया है, हेपाटाइटिस है, तो उसको आमतौर से कहा जाता है कि इसको ठंडी चीज़ें खिलाई जाए। तो अब ऐसा शख्स अगर आया है किसी हकीम के पास या किसी भी डॉक्टर के पास, अगर उसको समझाया जाए कि भाई आपने, आपकी जो कैफियत है इस वक्त वो आपको पीलिया है, जॉइंडिस है, तो आप जो है वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर गंडेरी का इस्तेमाल करें, तो अब वो अगर इसको ना माने और वो गर्म चीज़ें वो पाए खाता रहे, वो जो है और गर्म चीज़ें खाता रहे, तो फिर ये मर्ज बढ़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हर शख्स हर चीज़ खा सकता है।
सही,
ये एक जहन बना लेना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, मुझे ये अपनी तबीयत के एतबार से, अपने तबीब से, अपने डॉक्टर से और कुछ अपने तजर्बा से इसको अपने वाजे करना है कि मैं क्या खा सकता हूँ।
अपना डाइट प्लान ज़रूर बनाए,
ज़रूर बनाए।
सब ये वाकई बड़ी एक बात है ये कि हर बंदे को हर चीज़ माफिक नहीं आती, और हर बंदा दूसरे को मशवरा देता है कि यार ये खाओ, तो हर चीज़ हर किसी को माफिक नहीं आती। तो अपना डाइट प्लान कुछ हकीम से चाहें तो मशवरा कर लें, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती हो, डॉक्टर साहब से कर लें वरना हमारे सैयद साहब से कर लें, लेकिन बाकी अपना डाइट प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाज लोगों को बॉयल अंडे नहीं हजम होते, खाते हैं तो उनको मकसद वोमिटिंग जैसा हो जाता है, नहीं होता। बाज को दूध नहीं होता, जैसे अमीर अली सुन्नत फरमाते हैं कि खजूर जो है वो खाते हैं तो उसकी तजलियात वो मुँह में नहीं बर्दाश्त होती। तो ये बड़ा प्यारा आपने एक टॉपिक लिया है कि हर बंदा हर चीज़ नहीं खा सकता।
उसमें यही है कि अपना बंदा एक बना ले कि मुझे क्या खाना है, तो डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि हर चीज़ तो हम खाएंगे नहीं, अब वो अच्छी गिज़ा का इंतखाब हो। तो अच्छी में भी मिसाल है, अगर कोई कहता है कि भाई मुझे जो है ना वो फला चीज़ खानी है जिसे, तो अब वो उसका फ़िलहाल मौजूदा कैफियत के एतबार से वो उसके लिए वो चीज़ नहीं चलेगी, उसको नहीं खानी चाहिए। बाद लोग कह रहे होते हैं ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं, जो चाहे खाएं, मगर ये ठीक है सब चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं और सब में कुछ ना कुछ बरकतें हैं, उसके फ़ायदे हैं, लेकिन अब मैं किस कंडीशन में हूँ तो मुझे जो है ना वो ये देखना है, आया कि मैं मीठी चीज़ें खा सकता हूँ। जैसे शुगर वाला है, अगर वो मीठी खाता रहेगा भाई अल्लाह की नेमतें खाते रहे, तो वो मुनासिब नहीं होगा। तो अपनी जिस्मानी कंडीशन के एतबार से अगर बंदा चलेगा तो जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। तो यूँ अगर वो चलने लगे तो बहुत सारे अमराज का इलाज जो है ना इसी तरह हो जाता है।
सही फरमा रहे।
मिसाल अगर किसी को थोड़ा बहुत बाज़ अवकात गुर्दे में कुछ ज़र्रात से हो जाता है, तो उसमें ऐसा होता है कि खरबूजे का इस्तेमाल किया जाए, पानी ज़्यादा पिया जाए, और आलतू फालतू चीज़ें ना खाई जाएँ, तली हुई चीज़ें इस तरह से, और जो तली हुई चीज़ों के अलावा और ऐसी चीज़ें हैं कि जो उसके लिए मुनासिब नहीं है उनको छोड़ दिया जाए, तो क्या होता है कि वह आहिस्ता आहिस्ता ज़र्रात निकल जाते हैं, और अगर वो परहेज नहीं करता तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। वो पानी का अच्छा पानी पिया जाए, पानी ज़्यादा पिया जाए। इसी तरह से और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को बलगम है, आजकल जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी है, वो अगर ठंडा पानी पीता रहे और ये सारी चीज़ें उसने लेकर चलनी है, तो फिर ज़ाहिर बात है कि काम नहीं चलेगा। तो परहेज़ जो है वो ज़रूरी है। ऐसे ऐसे मरीजों को देखा है कि जो यूँ कह लें कि करीबुल मर्ग होते हैं अपनी जिस्मानी कंडीशन के एतबार से, कि देखा जाए कि यार ये बेचारा कितनी परेशानी में, लेकिन परहेज़ करने को तैयार नहीं होता।
पानी का आपने फरमाया खलील भाई, तो इस पर आप भी कुछ फरमाएं, डॉक्टर साहब आप भी बताएं, बच्चा बड़ा बूढ़ा कम से कम डेली पानी कितना पिए और पानी कैसा पिए। पानी का तो बहुत बड़ा ताल्लुक है ये, तो कई लोग पानी में मकसद नहीं पी पाते। अमीर अहले सुन्नत ने भी तरगीब दिलाई है और कहते हैं कि इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो ना रिकवर हो जाती हैं।
हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है
जी,
उसको अगर स्ट्रॉन्ग आपने करना है, यानी कुव्वत मुदाफ़त जिसको आप कहते हैं
जी,
उसको अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको इंसान को अमल करना चाहिए, और उसमें एक चीज होती है वो पानी।
पानी
एटलीस्ट, पानी की जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 8 गिलास होती है।
8 गिलास
मिनिमम रिक्वायरमेंट।
एक गिलास मेरे ख्याल में 250 ml का होता है, 250 ml का।
250 ml अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 2 लीटर पानी बन जाता है।
2 लीटर पानी,
2 लीटर बन जाता है। लेकिन अगर कैफियत पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क आपका कैसा है।
सही,
अगर कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, एसी के अंदर बैठा हुआ है, तो उसके लिए 6 गिलास 8 गिलास काफी रहेंगे। लेकिन जो आदमी फील्ड में काम कर रहा है या कोई मजदूर है ऐसी जगह पे काम कर रहा है, और स्पेशली हमारे घर में खवातीन जो चूल्हे के पास काम कर रही होती,
सही सही,
उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हमारे जैसे लोग जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, क्योंकि उनको पसीना ज्यादा निकल रहा है।
सही।
तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी का तायुन कर सकते हैं, 12 गिलास पे भी जा सकते हैं। मजदूर अगर सड़क पे धूप में काम करने वाला है तो वो 16-17 गिलास पे भी जा सकते हैं।
पहली बात की डॉक्टर साहब, अपनी कंडीशन के हिसाब से, स्पेशली जो आपने इस्लामी बहने खवातीन से मुतालिक कहा कि चूल्हा, घर में काम, सफाई, काम काज और ये लगी होती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात घरों में के मैटर तो घर के मर्द जानते ही होंगे अपने घर के मामलात। तो मैं अपनी इस्लामी बहनों से भी कहूँगा कि काम काज का अपर लोड होता है, बच्चों को स्कूल मदरसे भेजना, तो फिर उनको सुबह ब्रेकफास्ट, तो उनको कुछ लंच बना कर देना, वापसी में उनके लिए अरेंज करना, तो घर के मर्द उठ रहे हैं 10-11 बजे तो उनका ब्रेकफास्ट, फिर काम की घर में तरकीब के कहीं काम वाली है नहीं है तो घर के काम में आप लग गई, फिर चूल्हे के पास खड़ी हैं, अगरचे सर्दी ही क्यों ना हो, चूल्हा चूल्हा है, हांडी पकड़ी है, उसका भी धुआं उठ रहा है, तो सारा दिन करने के बाद मैं अपनी इस्लामी बहनों से अर्ज करूंगा कि आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें। शायद ये होता हो कि दूसरों की फिक्र में अपनी फिक्र रह जाती हो, प्रॉपर ब्रेकफास्ट ना होता हो, नाश्ता, पानी की तरफ तवज्जो ना होती हो। और डॉक्टर साहब, ख्वातीन में ये जब आपने टॉपिक लिया तो मेरे जहन में आया कि आसाबी कमजोरी, पट्ठों में खिंचाव, सर में दर्द, नकाहत, और बाज़ औक़ात ये कंप्लेन तो शायद कई लोगों को होगी, आप में से भी कि इस तरह आते होंगे पैगामात कि ख़वातीन शाम में घर की जो बिल्कुल सारा दिन लगी होती हैं, मगरिब इशा के टाइम निढाल हो जाती है ना, तो ये अपनी केयर कैसे करें इस्लामी बहनें?
देखिए बाबू, आपने अभी एक बात बोली इन्हीं के अंदर कि अपनी खुराक का ख्याल करें।
जी,
हमारे यहाँ प्रैक्टिकली मैंने ये नोटिस किया है, मैंने अपनी फैमिलीज के अंदर, अपने खानदान के अंदर, और अक्सर जो करीब दोस्त अहबाब हैं उनमें ये नोट की है मैंने चीज, खवातीन अपनी खुराक पे ध्यान नहीं देती
ना,
बिल्कुल नहीं देती हैं वो। मतलब अपने घर वाले को खिलाएंगी, अपने बच्चों को खिला देंगी, फिर थोड़ा बहुत बचेगा तो वो खा लेंगी।
सही,
ये गलत चीज है। आप जितना दूसरों के लिए ख्याल करते हैं उससे ज्यादा आपको करना है, क्योंकि आपने इनकी केयर करनी है।
सही,
आप ठीक होंगे तो आप इनकी केयर कर।
बड़ी प्यारी बात फरमाई
आपने। तो आप अपनी डाइट का ख्याल करें। आप उसको प्रैक्टिकली तरीके से अगर देखते हैं तो अगर मैं रिकॉर्ड देखता हूं तो हमारे यहाँ फीमेल के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी की बहुत ज्यादा शिकायत, यानी खून की कमी की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। उसकी रीजन यही होती है कि उनकी डाइट नहीं सही होती, खुराक ठीक नहीं होती है, प्रॉपर नहीं लेती हैं, सही तरीके से नहीं लेती हैं वो। अब जैसे आपने हम दूध की बात की,
सही,
नहीं माफी खाता, नहीं पीते, उसका अल्टरनेट ले लें,
अल्टरनेट
कोई और ले लें, नहीं समझ में आता डॉक्टर से मशवरा कर लें, कुछ सप्लीमेंट आपको दिया जा सकता है, लेकिन अपने आप को गिराए नहीं। अगर आपने अपनी सेहत गिरा दी तो आपके घर को कौन केयर करे?
बड़ी प्यारी बात है।
तो आपने अपने आप को स्ट्रांग रखना है, उसके बाद जाके आपने अब दूसरों को स्ट्रांग कर सकते हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, हर चीज का ख्याल रखें। देखें, घर के अंदर जो मेन जो घर के पिलर्स होते हैं वो घर की खवातीन हो।
सही,
बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक उनकी केयर वो खुद कर रही होती है, चाहे वो क्रॉलिंग वाला बच्चा हो, रंगी रेंगने वाला बच्चा हो। उसके हवाले से मैं ये कहूंगा, जैसे अब मिसाल के तौर पे आप घर के अंदर दाखिल होते हैं, घर की सफाई के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो घर में दाखिल होते हैं वो चप्पलें वगैरह सब घर से बाहर उतारें या एक रैक बना लें, उसको बाहर रखें, अंदर की चप्पलें अंदर रखें।
सही,
अब बच्चा क्रॉलिंग करता है ना, आए दिन देखोगे छोटे बच्चों को मोशन बहुत होते हैं।
सही,
रीजन यही होती है। अब वो बच्चा चल रहा है, जमीन पे चल रहा है, हमारे जूते भी जा रहे हैं, वही उस बच्चे के मुंह में भी जा रहे हैं।
सही,
तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको बच्चे उमूमन बीमार हो जाते हैं। इसका केयर कर लें, एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ जो मॉपिंग करनी होती है, पोछा लगाना होता है, वो आपने रोजाना ही लगाना है।
सही,
हर घर में ही लगता है।
सही,
तो आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ लगा लें, थोड़ी सी केयर कर लें, चप्पलें वगैरह बाहर उतारते हैं। इसी तरह आप पानी की मिकदार अगर पूरी कर रही है, साथ साथ अपनी खुराक की मिकदार पूरी करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो नींद,
नींद
नींद पूरी नहीं करते, नींद भी हमें चाहिए हर हाल में पूरी करना।
सही,
कि कम से कम 8 घंटे आपने सोना है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो बड़े शहरों का पैटर्न है वो ये है कि वो 1-2 बजे से पहले नहीं सोते।
सही,
अब 1-2 बजे से नहीं पहले सोते तो सुबह उठ के बच्चे ने स्कूल भी जाना है, 6 बजे उस खातून ने उठ जाना है।
सही, बिल्कुल,
कहाँ उसकी नींद पूरी होगी? फिर वो 6 बजे उठ के उसकी तैयारी, फिर वो घर वालों के लिए नाश्ता बनाना है, 8-9 बज जाते हैं।
सही,
8-9 बजे के बाद अगर घर में कोई मासी वगैरह आ गई तो वो आ जाती है काम करने के लिए, फिर उसके साथ वो शुरू हो जाती है, तो वो नींद दोपहर को एक घंटा नींद बड़ी मुश्किल से, तो ऊपर की नींद भी आपने ड्रॉप की, दोपहर को ड्रॉप की। अब अल्लाह ताला ने नींद के लिए जो टाइम दिया है वो रात का बेहतरीन टाइम
है,
और जितने अच्छे तरीके से पुरसुकून नींद रात को आती है, दिन में आप 10 घंटे सो जाएं आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, वो बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलेगा जो रात को मिलता है। तो नींद पूरी करें, पानी पूरा करें, डाइट मुनासिब अंदाज में लें, मुतनासिब अंदाज में लें, एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज हर कोई तो नहीं कर सकता, आप घर में वॉक करें कम अज कम, वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप सही तरीके से कर ले। स्पेशली इस्लामी बहनें खवातीन जो हैं वो घर के अंदर कर सकती हैं, अगर मर्द हैं उनको ये टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो कम से कम 12-12 मिनट जरूर वॉक करें।
सही,
ये 4-5 पॉइंट करें, मुनासिब गिजा खाएं, आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो जाएगा।
सही,
जब डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बीमारियों से लड़ाई की सलाहियत बढ़ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर घर के अंदर 5 बच्चे हैं, 5 एक ही छत के नीचे हैं, एक ही माहौल के अंदर एक ही खुराक खा रहे हैं, लेकिन 4 ठीक है, 1 बीमार ज्यादा होता है। उसकी रीजन यही है कि वो जो 1 बीमार है उसका डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर है।
सही,
वो जल्दी जल्दी इसको अडॉप्ट कर रहा है बीमारी को, जो दूसरे हैं उनका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है। तो आप अपने जो डाइट पैटर्न है उसको बेहतर करें। अब खुराक, हर कोई आदमी अच्छी गिजा नहीं खा सकता, हर कोई रोजाना दूध नहीं पी सकता, हर कोई रोजाना अंडे नहीं खा सकता, आप उसको डिवाइड कर लें।
सही,
हफ्ते में 1 दिन तो पी सकते हैं।
सही,
हफ्ते में अंडे तो खा सकते हैं।
सही,
अल्टरनेट ले लें, कोई और चीज ले लें। आप गोश्त अगर रोजाना नहीं खाते, सब्जी उसका नेमुल बदल है, बहुत सारी चीजें, यानी सारी चीजों का मिक्सचर ले लें आप। ये नहीं कि गोश्त आए तो गोश्त ही खाए जा रहे हैं, चावल है, बहुत सारी फैमिली ऐसी चावलों भी चल रही होती है।
सही,
चावल खाए जा रहे हैं, गंदुम भी तो कोई चीज है। अब जब आप इस किस्म की डाइट लेते हैं तो एक बीमारी और होती है आपको, जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन।
ये क्या डॉक्टर
साहब? कब्ज।
अच्छा,
कब्ज की शिकायत, ये बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ। मतलब मैं अगर कहूँ कि मेरे पास हर दूसरा मरीज इस बीमारी के साथ आता है, और जब मैं उसकी तहकीक में जाके पता करता हूँ तो पता चला डाइट पैटर्न ही खराब है, वो फाइबर डाइट ही नहीं ले रहा जो उसकी कब्ज को खत्म कर सकते।
इसको तो हकीम साहब वो भी कहते ना, उम्मुल अमराज।
उम्मुल अमराज, बिल्कुल सही, यही कहा जाता है। वो हकीकतन में यही बात है कि एक इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां,
बहुत सारी बीमारियां,
तो ये भी आपकी खुराक से रिलेटेड आ गई चीज। आप अपनी डाइट पैटर्न ठीक करेंगे, आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है आदमी। तो ये 4-5 चीजें होती हैं जिसके अंदर आदमी केयर कर सकता है। अब मेन चीज इस किस्म के ठंड वाले मौसम में अगर हम आप आ जाते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर, ये होती है कि जो खिड़कियां दरवाजे हैं, मेक श्योर के उनके ऊपर आपकी जालियां लगी हुई है।
जालियां
लगवा लें, क्योंकि मौसम ऐसा है, पंखे आपके बंद होते हैं, मच्छर आपके अंदर आते हैं।
सही,
ठीक है, पर दिन में पंखा चल रहा होता है ना तो मच्छर नहीं आएगा, लेकिन जब पंखे बंद होते हैं तो मच्छर आते हैं, फिर मच्छर जो है फिर वो भिन 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 म्यूजिक सुला रहे होते हैं सारे के सारे, तो उसकी वजह से वो बीमारी भी आती है। और फिर जैसे डेंगू का हवाला दिया तो बहुत मतलब ये है कि डेंजरस बीमारी है, लेकिन उतना ही आसान उसका क्योर है।
सही,
जितनी डेंजरस वो है उतना ही आसान क्योर है, सिर्फ पानी।
सही,
सिर्फ लिक्विड 3 लीटर पानी आप बॉडी में डालें किसी भी शक्ल के अंदर।
सही,
अपनी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए, गला खराब होती है ना ठंडा पानी पीना शुरू कर दे, अपनी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए 3 लीटर बॉडी के अंदर पानी डालें, विद इन अ वीक आप ठीक हो जाएंगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, हसब जरूरत जो बुखार की गोली आती है हसब जरूरत डॉक्टर के मशवरे से वो यूज कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कर ले। छोटी छोटी चीजें से करके आप बहुत बड़ी चीजों से बच सकते हैं।
सही फरमा रही है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम घर और मुआशरा, माशाल्लाह जो टॉपिक चल रहा है और हमारे माहिरीन बैठे हैं, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के जिम्मेदारान, और माशाल्लाह ये अपनी अपनी जगह माशाल्लाह इस चीज़ में भी बहुत महारत रखते हैं, लेकिन वक्त हमें गुंजाइश नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। तो जो हमारी गुफ्तगू हुई है, बातें तो बेशुमार है, असल है करना, एहतियात करना, प्रैक्टिकल करना। और बहुत प्यारी बात डॉक्टर साहब ने फरमाई थी कि घर के जो उमूर अंदरूनी मैटर है, जो सैयद साहब ने भी फरमाया कि हमारा जो ये बावर्ची खाना है, ये दवा खाना भी है, तो घर की इस्लामी बहनें ये सबको संभालती हैं। अल्लाह इनको हिम्मत दे, ये खाना पकाना, घर संभालना, कपड़े धोना, बीसियों काम है, फिर बच्चों को संभालना, बूढ़े हैं तो उनको संभालना, घर के मर्दों की केयर, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, तो ये अपने आप को मेंटेन रखेंगी, मैनेज रखेंगी और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी। तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ करें, इबादत पर कुव्वत पाने के लिए, दीन की खिदमत के लिए, اپنے اہل و عیال بال بچوں کی اچھی خدمت کرنے کے لیے تو خود سیٹ ہوں گی تو دوسروں کی خدمت کریں گی, تو اس پر بھی توجہ دیجئے. اچھا, میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے پروگرام میں نیک اعمال جو ہیں, 72 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے, وہ بھی ہم دکھاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے.
15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی, حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے.
کیا آپ صفائی ستھرائی کے عادی اور سلیقہ مند ہیں؟ صفائی ستھرائی یعنی بدن و لباس, گھر اور جہاں کام کرتے ہیں وہ جگہ اور وہاں کی اشیاء صاف رکھنا وغیرہ. سلیقہ یعنی وقت کی پابندی, گھر اور اپنی یا کسی اور کی گاڑی میں بیٹھتے وقت بلا ضرورت زور سے دروازہ بند نہ کرنا. اپنے گھر, تعلیم گاہ, دفتر یا کسی کے ہاں کی جو چیز اجازت ہونے کی صورت میں اٹھائی پھر اسی جگہ رکھنا وغیرہ.
تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ دیکھا کہ آج یہ نیک عمل جو ہم نے دیکھا, یہ بھی اور دیگر جو نیک اعمال ہے, یہ تقوی, پرہیزگاری, احتیاط اور اس میں صحت سے متعلق بھی ہے, تو اس پر بھی عمل کریں, انشاءاللہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا. میرے مدنی چینل کے ناظرین, گھر اور معاشرے میں بیماریوں سے حفاظت, یہ جو ٹاپک چل رہا ہے, گفتگو آپ سن رہے ہیں, اسی ٹاپک سے متعلق ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. انشاءاللہ اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کلپ.
اگر کوئی ایسا مریض جو ڈائیلیسس پر ہے اور وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے بڑا تنگ ہے اور اپنے آپ کو بد دعائیں دیتا ہے, اپنی اس بیماری کو برا بلا کہتا ہے, اس کا یہ عمل کیسا ہے؟
بالکل غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کہ برا بلا کہنے سے بیماری چلی نہیں جاتی, بیماری کا علاج کیا جائے. اب یہ بولیں گے بھائی ڈائیلیسس اتنے عرصے سے ہو رہا ہے, برسوں سے ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہے. یعنی کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھنے کے بجائے, کہ جو عیش میں ہیں, آسانیوں میں, ان کو دیکھنے کے بجائے مزید جو تکلیفوں میں نا ان کو بندہ دیکھے. طریقہ یہی ہے. اب ڈائیلیسس والا مریض یہ غور کرے کہ میری ڈائیلیسس ہو رہی ہے, باقی کوئی مرض نہیں ہے, وہ بیچارہ فلاں اگر توجہ کرے تو ہو سکتا ہے کوئی ذہن میں آ جائے. ورنہ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جس کو ہارٹ پرابلم بھی ہوتا ہے, ڈائیلیسس بھی ہو رہی ہے. اس طرح مطلب یہ کہ جس کو یہ دونوں مرض ہیں وہ پھر کینسر والے پر غور کرے, یار یہ کینسر بھی ہے اور ہارٹ پرابلم بھی ہے, بیچارے پر فالج بھی گرا ہوا ہے. اس سے میں تکلیف میں ضرور ہوں لیکن اس کے مقابلے میں کم تکلیف. تو یوں ہر تکلیف والے سے بڑھ کر تکلیف والا ہوتا ہے. نیچے کی طرف دیکھنا ہے. مالدار بھی نیچے کی طرف دیکھے, مالدار بڑے سرمایہ دار کو نہ دیکھے, غریب کو.
تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. بعض اوقات سنتے ہیں, سمجھ بھی آتا ہے, عمل نہیں ہو پاتا. تو ان تمام باتوں پر غور بھی کریں, عمل بھی کریں, تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
گھر پر معاشرہ.